लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
नमस्कार श्रोताओ, आज पुण्य बृहस्पतिवार है। पास्का महापर्व यानी ईस्टर रविवार से पूर्व पड़ने वाले बृहस्पतिवार पर हम आज के प्रसारण में एक चिंतन प्रस्तुत कर रहे हैं। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और फादर संजय एक्का।
थाली प्याले में प्रभु ने
नमस्कार श्रोताओ, आज पुण्य बृहस्पतिवार है। पास्का महापर्व यानी ईस्टर रविवार से पूर्व पड़ने वाला बृहस्पतिवार। आज के प्रसारण में इसी पर प्रस्तुत है एक चिंतन। श्रोताओ, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के स्मरणार्थ संपूर्ण विश्व में मनाया जाने वाला ईस्टर अथवा पास्का महापर्व ख्रिस्तीय धर्मानुयायियों का सर्वाधिक महान धार्मिक पर्व होता है और इससे पूर्व पड़ने वाला सप्ताह पुण्य सप्ताह कहलाता है। पास्का महापर्व से पूर्व 40 दिन तक ख्रिस्तीय विश्वासी त्याग, तपस्या, उपवास, परहेज और उदारता के कार्यों से मन परिवर्तन के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। यह आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा पास्का महापर्व से पूर्व पड़ने वाले सप्ताह में यीशु के दुख भोग और उससे संबंधित घटनाओं के स्मरणार्थ संपन्न विविध धर्म विधियों से अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। इस वर्ष पुण्य सप्ताह 1 अप्रैल को खजूर रविवार से शुरू हुआ। दुर्भाग्यवश विगत वर्ष से कोरोना वायरस की चपेट में आया विश्व अभी भी इस महामारी के संक्रमण और इसके दुष्परिणामों से जूझ रहा है। हजारों लाखों लोग रोजी रोटी कमाने के साधन खो चुके हैं। लाखों लोग भोजन, दवाएं आदि प्राथमिक संसाधनों से भी वंचित हो गए हैं। विश्व के कई हिस्सों में लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते लोग अपने घरों में बंद रहने के लिए बाध्य हैं। गिरजाघरों में भी सीमित संख्या में ही लोग जा रहे हैं और कई जगहों पर तो इसकी अनुमति भी नहीं है। वैसे धार्मिक समारोहों में टेलीविजन, रेडियो और डिजिटल संचार माध्यमों द्वारा शामिल हुआ जा सकता है, किंतु बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास यह सुविधा नहीं है। इस असाधारण स्थिति में पुण्य सप्ताह के लिए निर्धारित बाइबल धर्म ग्रंथ के पाठों पर चिंतन हम सब के लिए आत्मिक बल और सांत्वना का स्रोत सिद्ध हो, यही हमारी विनती और हमारी आशा है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान महापर्व से पूर्व पड़ने वाला बृहस्पतिवार यहूदी जाति के पास्का भोज का पावन दिवस है। यहूदी जाति में जन्म लेने के कारण यीशु मसीह ने भी अपनी मृत्यु से पूर्व शिष्यों के साथ भोजन कर उनके पैर धोए थे। अपने इस अनुपम कृत्य द्वारा उन्होंने संपूर्ण विश्व के समक्ष युग युगांतर के लिए सच्चे बड़प्पन की एक नई और क्रांतिकारी शिक्षा प्रस्तुत की थी। फिर पुण्य बृहस्पतिवार पवित्र युखरिस्तीय और पौरोहित्य संस्कारों की स्थापना का भी पवित्र दिवस है। रोटी और अंगूरी लेकर यीशु ने प्रार्थना पढ़ी और इसे अपने देह और रक्त रूप में शिष्यों को बांटकर युखरिस्तीय संस्कार की स्थापना की थी। पौरोहित्य संस्कार को उन्होंने वंशगत परंपरा से मुक्त किया तथा सभी जातियों और वंशों के लिए पौरोहित्य का द्वार खोल दिया। नए व्यवस्थान के याजक पशु बलि नहीं वरन रक्त विहीन विधि से ख्रीस्त के बलिदान को दोहराते तथा उनके मुक्ति कार्य को जारी रखते हैं।
पास्कोत्सव की रीत यरूशलम में ही सदा, उत्सव परम पुनीत सब करते संपन्न थे। प्रभु ने भी निज शिष्यों के संग प्रभु ने भी निज शिष्यों के संग हाँ यरूशलम प्रस्थान किया। पासका भोजन के पहले तब यीशु ने उनको ज्ञान दिया। पेतुस चरणों में बैठ गए यीशु झारी में जल भर कर शिष्यों के चरण पखारेंगे अब यीशु सबके गुरु होकर। शिष्यों की आनाकानी पर प्रभु ने उनको मजबूर किया। है कौन बड़ा सबसे हम में उनकी शंका को दूर किया।
श्रोताओ, पास्का का अर्थ है पार होना। नबी मूसा के काल में मिस्र की दास्ता से मुक्त होकर उसी रात प्रतिज्ञात देश की ओर निर्गमन की याद करते हुए यहूदी जाति पास्का पर्व मनाती रही थी। यहूदियों को ईश्वर से आदेश मिला था कि मुक्ति की रात को वे अनंत काल तक पर्व घोषित करें, क्योंकि इसी रात न्यायकर्ता ईश्वर मिस्र को दंडित कर इसराइलियों को मुक्त करने वाले थे। प्रथम पास्का अर्थात मिस्र की दास्ता से मुक्ति के पूर्व बेला में यहूदियों ने पास्का मेमना खाया और प्रभु के आदेश अनुसार मेमने का रक्त अपने घरों के दरवाजों पर पोत दिया ताकि उनके पहलौठे पुत्रों की प्राण रक्षा हो सके। बाइबल की इस घटना का विवरण हमें प्राचीन व्यवस्थान के निर्गमन ग्रंथ के 12वें अध्याय में मिलता है जो इस प्रकार है। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, इसराइल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हों तो जरूरत के अनुसार पास वाले घर से लोगों को बुलाओ। उस मेमने में कोई दोष न हो, वह नर हो और एक साल का, वह भेड़ा हो अथवा बकरा, महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम को सब इसराइली उसका वध करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा दरवाजों की चौखट पर उसका लहू पोत दिया जाए। उसी रात बेखमीर रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। और 12 से लेकर 14 तक के पदों में लिखा है, उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूंगा। मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं के सभी पहलौठे बच्चों को मार डालूंगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूंगा। तुम लहू पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो, वह लहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। इस प्रकार मुक्ति की पूर्व संध्या यहूदियों ने पास्का मेमना खाया तथा मेमने के रक्त को अपने घरों की चौखटों पर पोतकर अपनी अलग पहचान बनाई। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञानुसार उनकी रक्षा की और मिस्र के फराउन को उसके अहंकार के लिए दंडित किया। प्रभु ईश्वर के प्रति कृतज्ञ यहूदी जाति प्रतिवर्ष पास्का पर्व मनाती रही। चुनी हुई प्रजा में जन्म लेने के कारण यीशु भी पास्का पर्व के सभी रीति रिवाजों का अनुपालन करते रहे, किंतु अपनी प्रेरिताई के तीसरे और अंतिम वर्ष उन्होंने यहूदियों के पास्का को एक नया अर्थ प्रदान कर दिया। प्राचीन व्यवस्थान में मेमने का रक्त मिस्र की दास्ता से मुक्ति का प्रतीक बना, जबकि नवीन व्यवस्थान में यीशु ख्रीस्त स्वयं बलि का मेमना बने और उनका रक्त मानव जाति की मुक्ति का प्रतीक। श्रोताओ, प्राचीन व्यवस्थान में बलिदानों का उद्देश्य ईश्वर के कोप को शांत करना तथा उनके अनुग्रह की कामना करना था, किंतु दुर्भाग्यवश कालांतर में मनुष्य बलिदानों के मूल उद्देश्य को ही भुला बैठा। अस्तु, अर्पण विधियों का सिलसिला एक ओर चलता रहा और दूसरी ओर मानव पाप के दलदल में फंसता चला गया। इसीलिए नबियों के मुख से प्रभु यावे को यह फटकार बतानी पड़ी। मैं तुम्हारे मेढ़ों और बछड़ों की चर्बी से ऊब गया हूँ। मैं सांडों, बकरों और मेमनों का रक्त नहीं चाहता। जब तुम मेरे दर्शन को आते हो तो कौन तुमसे यह सब मांगता है? वस्तुतः यीशु के बलिदान के साथ ही प्राचीन काल में प्रचलित बलिदानों की निरर्थकता दूर हुई। नवीन पास्का के साथ ही उन्होंने प्राचीन विधान को पूर्ण किया तथा नूतन विधान की स्थापना कर डाली। इस पर उन्होंने अपने रक्त की मुहर लगाई ताकि चिर काल तक यह हम सब के लिए मुक्ति का स्रोत बना रहे। यीशु मसीह के पास्का भोज के विषय में संत पॉल लिखते हैं,
उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बने रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है।
क्रूस पर अपनी मृत्यु की पूर्व संध्या यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ भोजन किया तथा रोटी और दाखरस अपने शिष्यों में बांटकर यूखरिस्ट अर्थात परम प्रसाद की स्थापना की। संत लुकस के अनुसार
उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी तरह उन्होंने भोजन के बाद यह कहते हुए प्याला दिया, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है।
इन रहस्यपूर्ण शब्दों से प्रभु येसु ने प्राचीन विधान को नवीन विधान में परिवर्तित किया तथा यूखरिस्तीय संस्कार की स्थापना की।
थाली प्याले में प्रभु ने रोटी अंगूरी उठाकर मांगी दुआ दिल से ठहराया पावन संस्कार।
शिष्य द्वारा गुरु के चरण स्पर्श अथवा दास द्वारा स्वामी के पैर धोई जाना तत्कालीन यहूदी समाज में भी एक साधारण सी बात थी, किंतु गुरु को शिष्यों के पैर धोते देखना अनहोनी और विचित्र घटना थी। कौन बड़ा और कौन छोटा, भला यह कैसे हो सकता है कि गुरु शिष्यों के पैर धोए? शिष्यों के अंतर मन में छिड़े इस द्वंद को शांत करते हुए पास्का भोज के समय यीशु मसीह ने उनके पैर धोए तथा संपूर्ण मानव जाति के समक्ष दीनता, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा का अनुपम आदर्श प्रस्तुत किया। यहूदी जाति के पास्का भोज के समय घटी इस क्रांतिकारी घटना में ही ख्रिस्तीय धर्म का सार निहित है, जिसके विषय में संत योहन लिखते हैं,
उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वे परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बंधे अंगोछे से उन्हें पोछने लगे। उनके पैर धोने के बाद वे अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए।
यीशु के आगमन तक मनुष्य ईश्वर से भय खाता रहा था, किंतु यीशु मसीह ने अपने जीवन और कार्यों द्वारा ईश्वर और मानव के बीच विद्यमान पिता एवं संतान के घनिष्ठ संबंध की प्रकाशना की। ईश्वर परम प्रेम है, यह आश्वासन भी मानव को यीशु मसीह से ही मिला। नबी ईसाया मनुष्य के प्रति ईश्वर के प्रेम को मां के प्रेम से श्रेष्ठ कर घोषित करते हैं। क्या स्त्री अपना दुधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। श्रोताओं, मां त्याग और सेवा की साक्षात देवी है। वह अपनी संतान के प्रेम के लिए सब कुछ को तैयार हो जाती है, तो उनका प्रेम कितना महान होगा जिन्होंने अपने पुत्र को ही हमारे लिए अर्पित कर दिया। यीशु ख्रीस्त के मृत्यु बलिदान में हमें पिता ईश्वर के असीम प्रेम का ठोस प्रमाण मिला। इसीलिए प्रेम पर उनकी शिक्षा को याद करना तथा उसका पालन करना हमारा धर्म है। पास्का भोज के बाद शिष्यों से विदा लेते समय यीशु का यह आदेश कि जैसा मैंने तुम लोगों से प्यार किया वैसा तुम भी किया करो, युग युगांतर तक मानव जाति के लिए उनका गुरु मंत्र बनकर रह गया है, जिसमें भागीदार बनने के लिए हम सब आमंत्रित हैं।
सुनो मेरा उपदेश नया, सब मेरे प्यारे मित्र हो, सेवक नहीं सच है मेरी बात करो यकीन। एक दूजे के पांव सदा
बोले प्रभु,
जैसा के मैंने किया
प्रभु।
आपस में प्रेम के प्रतीक तुम बने रहो, स्वर्ग में मेरे साथ भोजन करो।
इसी के साथ वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।
संग में तुम्हारे मैंने जो किया
प्रभु,
समझ सके तुम क्या।